पारिवारिक आवास उद्यान गृह आदि में ठहरना अनुचित माना गया, क्योंकि ऐसे स्थानों पर भीड़ भाड़ होती थी जिससे उनकी एकाग्रता भंग होती थी। उनके लिए चीवर, जूते, दंड और छत्र आवश्यक थे। वे अपने सिर को मुंडित रखते थे, वे नग्न रहते थे या श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कभी कभी उपासकों द्वारा उन्हें वस्त्र प्राप्त होता था। वे अपनी आवश्यकता अनुसार अधो वस्त्र, उत्तरीय आदि का प्रयोग करते थे। जाड़े के दिनों में भिक्षुगण कई वस्त्र उपयोग में लाते थे। उन्हें 4 वस्त्र रखने की अनुमति दी गई थी। उनके 2 वस्त्र 3-3 हाथ के होते थे, तीसरा वस्त्र 2-2 हाथ का और चौथा वस्त्र 4 हाथ का। इस प्रकार के वस्त्र न कसाए होते थे न सुगंधित, प्रायः बिना धुले हुए वस्त्र धारण किए जाते थे। कभी कभी आवश्यकता अनुसार उन्हें पानी से भींच लिया जाता था। भिक्षा पात्र उन्हें उपासक से ही प्राप्त होता था, किंतु वह अलंकृत और मूल्यवान धातु का नहीं होता था। उनका भिक्षा पात्र प्रायः कांस्य अथवा मिट्टी का बना होता था। पात्र के भींग जाने पर उसे पोछ कर सुखाया नहीं जाता था। इस प्रकार जैन श्रमणों के लिए अनेक नियम थे जिनका अनुपालन आवश्यक था। भिक्षु प्रायः साधु और शुद्ध प्रकृति के होते थे तथा अनुशासन, त्याग, सुनृत और अनासक्त जीवन का पालन करते थे। आचारांग सूत्र में उनके लिए कठोर नियम बताए गए हैं। दिगंबर साधु को क्षुल्लक, इल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता था तथा श्वेतंबर साधु को यति, साधु और आचार्य। जिन कल्पी साधु के नियम कठोर होते थे तथा अस्थवीर कल्पी साधु के अपेक्षाकृत अधिक कम कठोर। ईसा साधु शिक्षावृत्ति पर अपना पोषण करते तथा धन संपत्ति से दूर रहते थे। सुगंधित द्रव्य, जूते आदि का प्रयोग वे नहीं करते थे। 18 कर्मों से उन्हें दूर रहने का निर्देश दिया गया था। पहला हिंसा, दूसरा असत्य भाषण, तीसरा संभोग, चौथा चोरी, पांचवा रात्रि में भोजन, छठवा संपत्ति, सातवा जल शरीरी जीव पीड़न, आठवां क्षिति शरीरी जीव पीड़न, नौवां अग्नि शरीरी जीव पीड़न, दसवां वनस्पति जीव पीड़न, ग्यारहवां वायु शरीरी जीव पीड़न, बारहवां गृहस्थ पात्र में भोजन, तेरहवां जंगम जीव पीड़न, चौदहवां वर्जित वस्तु, पंद्रहवां बिस्तर तकिये आदि का प्रयोग, सोलहवां चारपाई कुर्सी का प्रयोग, सत्रहवां अलंकरण और अठारहवां स्नान। इन बाह्य आचारों के अतिरिक्त उन्हें अंतः आचार का अनुपालन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना उनके लिए परम आवश्यक था। वस्तुतः जाति भेद से अलग रहने वाला व्यक्ति कर्म के ही आधार पर भिक्षु संघ में दीक्षित होते और अनुशासित तथा संयमित जीवन व्यतीत करते थे। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय, हेडलाइन है। जैन धर्म महावीर स्वामी के पश्चात कई विभागों और अन्यायों में विभाजित हो गया। इनमें श्वेतांबर और दिगंबर प्रधान हैं। श्वेतांबर वे थे जो सफेद वस्त्र बांधते थे तथा दिगंबर वे थे जो निर्वस्त्र नंगे रहते थे। वर्धमान महावीर ने घर छोड़ने के 13 महीने बाद वस्त्र त्याग दिया था तथा यह अनुभव किया था कि वस्त्रों का भी बंधन न हो, तभी से नग्न रहने का आचार जैन धर्म में प्रचलित हुआ। उत्तराध्ययन सूत्र, अस्थानांग सूत्र और आचारांग सूत्र में वस्त्र धारण करने का स्पष्ट उल्लेख है। यद्यपि उत्तराध्ययन सूत्र में पार्श्व के अनुयायी केसी और महावीर के अनुयायी गौतम के बीच हुए संभाषण का उल्लेख है, जिसमें गौतम का कथन है कि मोक्ष के वास्तविक साधन तो सदाचार, श्रद्धा और ज्ञान है, वस्त्रों का धारण करना आदि ब्रह्मा उपचार तो आध्यात्मिक उत्कर्ष की सुविधा के लिए है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में इसके प्रति कोई विशेष आबद्धता नहीं थी। वैसे नग्न रहने की स्थिति जैन सिद्धांत में उच्चतम आदर्श के रूप में थी। मथुरा से प्राप्त 2री सदी ईस्वी के जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी नग्न हैं। बराहमिहिर ने केवल दिगंबर मूर्तियों का ही विवरण दिया है। गुप्त काल तक आकर श्वेतांबर मूर्तियों का भी पूजन प्रारंभ हो गया था। सौराष्ट्र के बल्ला कुष्ठ में बल्लवी से प्राप्त कांसे की जैन तीर्थंकर की मूर्तियां धोती पहने दर्शित की गई हैं। बड़ौदा के निकट अकोटा से प्राप्त ऋषभनाथ की भग्न मूर्ति गुप्त शैली की धोती पहने हैं। संभवतः गुप्त काल से वस्त्र धारण किए हुए तीर्थकरों की मूर्तियां गढ़ी गई जो उनके सांप्रदायिक भेदभाव को व्यक्त करती है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायियों की यह मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। फलस्वरूप वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुणाट प्रदेश में बस गया। जब मगध का अकाल समाप्त हो गया तब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहां लौट आए, किंतु जैन संघ के नियम को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय विकसित हो गए, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में कई अंतर हैं। पहला, श्वेतांबर वस्त्र पहनते हैं तथा इसे मोक्ष प्राप्ति में बंधन नहीं मानते, किंतु दिगंबर नग्न रहते हैं तथा वस्त्र को भी मोक्ष प्राप्ति में बाधक मानते हैं। दूसरा, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग स्त्रियों को इसी जीवन में निर्वाण की अधिकारिणी मानते हैं, किंतु दिगंबर इसका विरोध करते हैं। तीसरा, श्वेतांबर अनुयायियों का यह विश्वास है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु दिगंबरों का यह विचार है कि वह उपवास कर सकता है। श्वेतांबरों का यह मत है कि महावीर ने यशोदा से विवाह किया था तथा उनको संतान भी हुआ, किंतु दिगंबरों का यह विचार है कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। पांचवा, श्वेतांबर अनुयायी का यह कथन है कि 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ स्त्री थी, किंतु दिगंबरों का कहना है कि वे पुरुष थे। छठवां, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग प्राचीन आख्यान को स्वीकार करते हैं जिनके अनुसार 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 वेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 अन्य थे, किंतु दिगंबर इन्हें नहीं मानते। इन विरोधों के होते हुए भी दोनों के दार्शनिक आधार एक हैं तथा दोनों संप्रदाय उमा स्वाति के तत्वार्थाधिगम सूत्र में वर्णित सिद्धांतों को प्रमाणित मानते हैं। कालांतर में ये दोनों गण कुल गच्छ शाखा आदि में विभाजित हो गए। श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हेडलाइन है। बाद में आकर श्वेतांबर संप्रदाय में 3 प्रमुख उप संप्रदाय हो गए। पहला, पुजेरा या मूर्ति पूजक या डेरावासी या मंदिर मार्गी। दूसरा, ढूंढिया अथवा बिस्तोला या स्थानकवासी या साधु मार्गी। और तीसरा, तेरापंथी। पुजेरा अनुयायी मूर्तियों को वस्त्राभूषणों से सज्जित करके फल फूल और नैवेद्य अर्पित करते हैं। स्थानकवासी लोका संप्रदाय से निकले हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते। इसी संप्रदाय से संबंधित स्वामी भिक्खन महाराज ने 1760 ईस्वी में तेरापंथी संप्रदाय चलाया। इनके अनुयायी जैन सिद्धांतों का अनुगमन करते हैं। दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय। दिगंबरों में भी 3 उप संप्रदाय बन गए थे। पहला 20पंथी, दूसरा 13पंथी और तीसरा तारणपंथी या समैयापंथी। 20पंथी मत के मानने वाले मंदिरों में मूर्तियों के अतिरिक्त तीर्थकारों की तथा क्षेत्रपाल, भैरव आदि की भी मूर्तियां पूजन के लिए रखते हैं एवं उन्हें फल फूल और मिठाई अर्पित करते हैं। 13पंथी अपने मंदिरों में केवल तीर्थकरों के मूर्तियां रखते हैं, उनके पूजन आराधन में वे फल फूल और नैवेद्य चढ़ाते हैं। इस संप्रदाय का उद्भव 1626 ईस्वी में भट्टारकों के अनाचर के कारण हुआ। उनका यह संप्रदाय तारणपंथी भी हुआ, जिसे 15वीं सदी में तारण स्वामी ने चलाया। ये लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। दिगंबरों में गुमानपंथी और तोतापंथी संप्रदाय भी है जिनका समाज पर बहुत कम प्रभाव है। जैन धर्म का संकलित साहित्य निम्नलिखित अंगों में है। पहला, आयारांग सूत, कोष्ठ में आचारांग सूत। दूसरा, सुयग डंग, कोष्ठ में सूत्र कृतांग। तीसरा, थाड़ंग, कोष्ठ में अस्थानांग। चौथा, समवायांग, पांचवा भगवती सूत्र, छठवा नया धम्म कहाओ कुष्ठ में ज्ञाता धर्म कथा, सातवा उवासक दशाओ कुष्ठ में उपासक दशा, आठवा अंतगण दशाओं कोष्ठ में अंतक्रियदशा, नौवा नौवा अनुतरो ववाई यदशाओ कोष्ठ में अनुतरो पपादिकस, दसवा पढ़ा वागरणी आई कोष्ठ में प्रश्न व्याकरण अड़ानी, ग्यारह विवाह का सुयम कोष्ठ में विमा का सूतम, और बारहवा दृष्टिवाय कोष्ठ में दृष्टिवाद। इन ग्रंथों के अतिरिक्त श्वेतांबर और दिगंबर आचार्यों ने भी जैन धर्म पर विविध ग्रंथ लिखे थे। श्वेतांबर संप्रदाय के अनेक आचार्य हुए जिन्होंने अनेक रचनाएं की। भद्रबाहु प्रथम, निर्युक्ति, भद्रबाहु संहिता आदि ग्रंथों के लेखक थे। भद्रबाहु द्वितीय ने न्याय शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। उमा स्वाति कोष्ठ में पहली सदी श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों के श्रद्धेय थे। उनका ग्रंथ तत्वार्थाधिगम सूत्र और उसकी टीका जैन धर्मावलंबियों ने बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। भद्रबाहु द्वितीय के शिष्य कुंदाचार्य कोष्ठ में पहली सदी लिखित समय सार, पच्चास्तिकाय, प्रवचन सागर, नियम सागर आदि ग्रंथ प्रसिद्ध है। बुद्धवादी सूरी के शिष्य सिद्ध सेन दिवाकर थे जिन्होंने सम्मतित अर्क सूत्र, न्यायावतार आदि ग्रंथियों की रचना की। सिद्ध सेन गढ़ी ने तत्वार्थाधिगम सूत्र पर टीका लिखी थी। हरिभद्र सूरी ने संस्कृत और प्राकृत में अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें न्यायावतार वृत्ति, न्याय प्रवेश सूत्र, षड दर्शन समुच्चय, दसवय कालिक निर्युक्ति टीका आदि अधिक प्रख्यात है। मल्लवादी रचित नयचग्र, अभय देव लिखित वाद महारणव, रत्न प्रभ सूरी कृत लघु टीका, देव सूरी रचित प्रमाणन नय तत्व ब्रालो कलंकार, हेमचंद्र लिखित प्रमाण मीमांसा, अन्य नोग्य दक्षेदिका, महावीर चरित, त्रिष्ठी सला पुरुष चरित आदि ग्रंथ जैन धर्मावलंबियों द्वारा अधिक प्रशंसित हुए। मल्ली सेन सूरी कोष्ठ में 1292 ईस्वी तक कोष्ठ में 1292 ईस्वी द्वारा अन्य योग व्यय वच्छेद पर लिखित स्यादवाद मंजरी नामक टीका बहुत अधिक ख्यात हुई। मलधारी राजशेखर सूरी कोष्ठ में 1348 ईस्वी ने प्रशस्त पाद भाष्य आदि कई ग्रंथों पर टीकाएं लिखी थी। दिगंबर संप्रदाय के भी अनेक प्रसिद्ध आचार्य हुए जिन्होंने विभिन्न लोकप्रिय ग्रंथों की रचनाएं की। उनमें विद्यानंद, मणिक्यनंदिन, प्रभाचंद, अमृत चंद्र सूरी, देवसेन, भट्टारक, लघु समंत भद्र, अनंत वीर्य, नेमिचंद्र, सिद्धांत अग्रवर्ती, ज्ञानचंद, गुणरत्न सूरी, श्रुत सागर गणी, धर्मभूषण, यशो विजय गणी आदि अधिक प्रसिद्ध है। अलंकदेव ने अष्टसती, राजवार्तिक, न्याय विनिश्चय आदि कई ग्रंथों की रचनाएं की थी। मणिक्यनंदिन कृत परीक्षा मुख सूत्र, प्रभाचंद्र रक्षित प्रमेय कमल मार्तंड तथा नेमिचंद्र लिखित गुम्मट सार, लब्धि सार, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय है। जैन धर्म का विकास वर्धमान महावीर के काल में अधिक हुआ जब तात्कालिक अनेक नरेशों ने इस धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। वैशाली का लिच्छवी शासक चेटक महावीर स्वामी का भक्त बन गया था। उसकी 8 रानियों ने भी इस धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त की थी। सिंधु सौबीर का अधिपति उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। इसके अतिरिक्त अनेक राजवंशों ने इस धर्म के प्रति अपनी रुचि दर्शित की थी। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम काल में जैन साधु भद्रबाहु के प्रभाव से जैन धर्म का अवलंबी हो गया था तथा अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर दक्षिण मैसूर के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चला गया था। वहां उसने तपश्चर्या करते हुए अपना शरीर त्याग दिया था। जैन धर्म की प्रथम सभा उसी काल में हुई थी जिसे संभूत विजय के शिष्य स्थूलभद्र ने आहुत की थी। उसी समय 12 अंकों में जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया जो पहले के 18 पूर्वों के स्थान पर ग्रहण किए गए। जैन धर्म के दूसरे संघ भद्रबाहु के अनुयायियों ने इस समिति की कार्यवाहियों को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप जैन धर्म में दो शाखाएं हो गई, एक महावीर के सिद्धांतों के अनुसार वस्त्रहीन रहने लगी और दूसरे उसके सिद्धांतों से अलग होकर श्वेत वस्त्र धारण करने लगी। पहली शाखा दिगंबर कही गई और दूसरी श्वेतांबर। दूसरी जैन समिति 512 ईस्वी में जैन साधु देवर्धिगणी के सभापतित्व में हुई थी। इस समिति में अंकों की रचनाओं के संकलन के साथ 84 आगमों की भी संख्या निश्चित हुई तथा 12 उपांग भी संकलित किए गए। सम्राट अशोक के पौत्र संप्रति ने आर्य सुहस्ती से जैन धर्म में दीक्षा लेकर उसका प्रसार किया। कलिंग नरेश खारवेल ने जैन धर्म अपनाकर उदयगिरी पर जैन साधुओं के निवास के लिए एक विशाल भवन का निर्माण करवाया था। उज्जैनाधिपति गर्दभील और उसके पुत्र विक्रम ने उज्जैन को जैन धर्म का प्रधान केंद्र बनाया। इस प्रकार उज्जैन जैन धर्म और शिक्षा का महत्वपूर्ण पीठ बन गया। इसी प्रकार उत्तर भारत में मथुरा और दक्षिण भारत में मैसूर जैन धर्म के विख्यात केंद्र थे। धीरे धीरे जैन धर्म पश्चिमी और दक्षिणी भारत महाराष्ट्र गुजरात मैसूर आदि प्रदेशों तक में ही सिमट गया। पूर्व मध्य युग के राष्ट्रकूट गंग कदम्ब और चालुक्य वंश के जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल जैसे शासकों ने इस धर्म का प्रचार किया। चालुक्य शासकों द्वारा श्वेतांबर संप्रदाय को गुजरात आदि प्रदेशों में अधिक प्रचार प्राप्त हुआ। हेमचंद्र के प्रयास से इस संप्रदाय का प्रभाव जनमानस पर पड़ा। इसी प्रकार दक्षिण में दिगंबर संप्रदाय का प्रसार हुआ। जैन साधु और सूरी विद्वानों के कारण भी इस धर्म का यथेष्ट प्रसार हुआ, किंतु हिंदू धर्म के पुनर्जागृत होने से जैन धर्म का प्रभाव मंद पड़ने लगा तथा सेने यह धर्म राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित रह गया। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों ने सत्य हिंसा सत्कर्म आदि पर सरल और सुबोध शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया जिससे इस धर्म का महत्व कम होने लगा। फलतः जैन गृहस्थ धर्म हिंदू धर्म से भी प्रभावित होता गया और हिंदू समाज एक अंग बन गया। इसके अतिरिक्त जैन धर्म में भी उन्हीं अवगुणों और त्रुटियों का प्रवेश हो गया था जो हिंदू धर्म में था। संघ में प्रवेश के समय जाति भेद और ऊंच नीच की भावना ने जैन धर्म को शिथिल कर दिया तथा बौद्ध धर्म के प्रसार और उसकी उन्मुक्तता ने उसे और आघात पहुंचाया। काया क्लेश, कठोर तपश्चर्या, निर्वस्त्रता जैसे सिद्धांतों ने जैन धर्म के विकास में अवरोध का काम किया। साधारण जनता ऐसे अतिवादी मार्गों से अलग होकर दूसरे धर्मों के प्रति आकर्षित हुई। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म का उद्भव और उत्कर्ष नामक चैप्टर की। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म का भी उदय हिंदू धर्म के प्रतिपक्षी धर्म के रूप में हुआ। इसके आदि प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उनकी माता महामाया ने रात में स्वप्न देखा कि वे हिमालय में स्थित अनवतप्त नामक दैवी झील की ओर ले जाई गई है जहां वे जगत के चतुर्दिक कोणों के दैवी रक्षकों द्वारा नहलाई जाती हैं। वहां एक श्वेत हाथी अपने सूंड में कमल का फूल लिए उनकी ओर आता है। दूसरे दिन उनके इस सपनों पर यह भविष्यवाणी की गई कि उन्हें अद्भुत पुत्र उत्पन्न होगा जो या तो अग्रवर्ती सम्राट होगा अथवा चक्रवर्ती उपदेशक मध्यम निकाय में यह कहा गया है कि 10 मास तक बोधिसत्व को गर्भ में रखने के बाद जब वह प्रसव का समय आया तब रानी महामाया की इच्छा अपने मातृ कुल के नगर देवदह में जाने की हुई। राजा ने अनुमति दे दी और कपिल वस्तु से देवदह का मार्ग साफ करके कदली से सुशोभित मंगल कलश ध्वजा पताकाओं से अलंकृत करके रानी को पालकी में बिठाकर भेजा। मार्ग में लुम्बिनी ग्राम में रुकी और साल वृक्ष के नीचे उसकी शाखा पकड़े खड़ी थी कि इसी बीच उन्हें प्रसव वेदना हुई और व्याकुल हो उठी। तत्काल बालक के रूप में बुद्ध का जन्म उस ग्राम के सार वृक्षों के बीच बगीचे में हुआ। जन्म होने पर वे खड़े हो गए और सात दग भरे और कहा, यह मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा कोई जन्म नहीं होगा। कालांतर में बुद्ध के जन्म स्थान पर सम्राट अशोक ने अनेक जन्म उनके जन्म लेने की स्मृति में एक प्रस्तर स्तंभ स्थापित करवाया था और उस पर यह उत्कीर्ण करवाया था कि यही भगवान शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे। कोष्ठ में हिद बुद्धे जाते शाक्य मुनित्त। बुद्ध का यह जन्म स्थान भारत की आधुनिक सीमा से 5 मील की दूरी पर स्थित है। उनके पिता का नाम सुद्योधन था, जो हिमालय तटवर्ती कपिलवस्तु गणराज्य के शाक्य वंशी शासक थे तथा कोसल राज्य के अधीन थे। उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया का देहावसान हो गया, इसलिए लालन पालन उनकी मौसी कोष्ठ मातृ स्वसा महाप्रजापति गौतमी ने किया, जिससे सुदोदन ने विवाह कर लिया था। जन्म के 5वें दिन एक बड़े समारोह में उनका नामकरण सिद्धार्थ किया गया। उनका गोत्र गौतम था, इसलिए उन्हें गौतम भी कहा गया। गौतम के विषय में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वे विख्यात ज्ञानी होंगे या चक्रवर्ती सम्राट, किंतु कालदेवल और कौंडिन्य जैसे लोगों का यह भी मत था कि वे संसार त्याग करेंगे। राजा सुद्योधन यह नहीं चाहते थे कि बुद्ध त्यागी बने। उन्होंने गौतम को अत्यंत भोग विलास में रखा ताकि वे संसार के मोह और आकर्षण से विलग न हो सके तथा दुष्ट और दुख और कष्ट का अनुभव उन्हें न हो सके। उन्हें प्रारंभ में विभिन्न विषयों तथा अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई, किंतु बड़े होने पर गौतम संसार की क्षणभंगुरता पर सर्वथा सोचा करते थे और एकांत में रहना उन्हें भला लगता था। यह देखकर उनके पिता सुदोधन बड़ी चिंता में रहने लगे और उन्होंने गौतम को सांसारिकता से संबद्ध करने के लिए 16 वर्ष की अवस्था में ही शक्य वंश की यशोधरा नामक रूपवती कन्या से उनका विवाह कर दिया। इस विवाह के लिए आयोजित की गई सभी प्रतियोगिताओं में बुद्ध ने भाग लिया और विजयी हुए। इसमें सम्मिलित होने वालों में उसके चचेरे भाई देवदत्त भी थे। बौद्ध ग्रंथों का यह कथन है कि गौतम के ऊपर इन भोग विलास और सुख ऐश्वर्य का कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। उनका मन न भिन्न भिन्न ऋतुओं के लिए निर्मित प्रसाद में ही रमता था और न पत्नी के आकर्षण में। जगत के दुख और क्लेश उन्हें सर्वथा निवृत्ति की ओर प्रेरित करते और वे सदा इस समस्या पर चिंतन किया करते थे कि कैसे सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाई जाए। उनके पड़ोसियों और कुटुंबियों में आए दिन झगड़े हुआ करते थे तथा उनके पड़ोसी कुलियों में रोहिणी नदी के जल को लेकर अक्सर युद्ध हुआ करता था, जिसे उस महाजनपद में निरर्थक लोग मौत के घाट उतार दिए जाते थे। आए दिन होने वाली इस घटना हिंसा से गौतम के मन और मस्तिष्क में बराबर अशांति उत्पन्न हो जाया करती थी और वे एकांत में बैठकर अच्छे और बुरे पर सोचने लग जाते थे। अत दंड सूत में वे स्वयं अपने मन की व्यथा को स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार सूखे में मछलियां तड़पती हैं, उसी प्रकार एक दूसरे के विरोध में मनुष्य को देखकर मेरे मन में और व्यथा उत्पन्न हुई। सभी लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध देखकर मेरा जी उब गया। मुझे यह संसार सारहीन लगने लगा, दिशाएं प्रकंपित सी लगी, कहीं अभय दृष्टिगत नहीं हुआ। जब भी वे राजमार्ग से नगर दर्शन के लिए चले, उन्हें कष्ट ही दिखाई पड़ा। ऐसी कई कष्ट संवलित घटनाओं का उल्लेख बौद्ध साहित्य में हुआ है, जैसे जर्जर शरीर लिए वृद्ध, पीड़ित रोगी, मृतक और वितराग सन्यासी, त्रिपिटक जैसे बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है कि एक दिन बुद्ध राजा उद्यान में रथ पर बैठे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी तथा शरीर पर झुरिया पड़ गई थी। उन्होंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने सारथी से उस व्यक्ति के विषय में पूछा। इस पर उन्हें ज्ञात हुआ कि एक न एक दिन सभी व्यक्तियों की ऐसी दशा होगी और वे वृद्ध होंगे। इससे उनका मन दुख से भर गया। यह प्रथम घटना थी। स्वयं भगवान सिद्धार्थ को बुद्ध बनाने के लिए अपना रूप बदलकर वृद्ध के रूप में सिद्धार्थ के सामने आ गए थे। दूसरी घटना भी इसी प्रकार की थी। राजमार्ग में सिद्धार्थ ने एक अत्यंत रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा जो ज्वर से पीड़ित था। तीसरी घटना में एक मृतक को लोग शमशान ले जा रहे थे और कुछ लोग दुखित होकर रोते जा रहे थे। इसे भी सिद्धार्थ ने रास्ते में देखा और जाना कि एक न एक दिन सभी को मरना है। चौथी घटना में उन्होंने एक भ्रमरशील साधु को देखा जो कसाय वस्त्र धारण किए जा रहा था। सिद्धार्थ ने उसे देखकर यह जानने का प्रयास किया कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या है तथा उसका मन कैसे स्थिर होगा। इस सब दृश्य देखकर गौतम बुद्ध का मन सांसारिक प्रवृत्तियों से हटकर निवृत्त की ओर होने लगा तथा संसार की नश्वरता और निसारता उनके सम्मुख स्पष्ट होने लगी। अतः देवदूतों द्वारा प्रदर्शित जन्म जरा रोग मृत्यु दुख और अपवित्र ने उन्हें संसार त्याग और निवृत्ति की ओर उत्प्रेरित किया। इन घटनाओं के विषय में शुद्धोदन ने जब सुना तब उन्होंने असजगता दिखाई तथा सिद्धार्थ के चतुर्दिक और सुख विलासिता इकट्ठी की। इस बीच सिद्धार्थ को एक पुत्र उत्पन्न हो गया जिस पर उन्होंने कहा राहु आ गया, इसलिए पुत्र का नाम राहुल पड़ गया। गृह त्याग के एक दिन पहले रात में एक समारोह में थे जहां नाच और गान हो रहा था। नाचते नाचते जब नर्तकियां सो गई तो उन्होंने देखा कि थोड़ी देर पहले जो नारियां बहुत सुंदर लग रही थी वे असुंदर और क्रूप लग रही हैं। वे सीधे अपने शयन कक्ष में आए और वहां अपने पुत्र और पत्नी को सोते हुए छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। मध्यम निकाय में स्वयं गौतम बुद्ध का कथन है। बोधि प्राप्त करने से पूर्व की दशा में मेरे मन में यह विचार उठा कि यह गृहस्थी का जीवन पूर्ण शुद्ध धर्ममय जीवन के अभ्यास में अत्यंत बाधक है। जब मैं किशोर अवस्था में जीवन के उठान पर कृष्ण केशों से युक्त था, अपने माता पिता की अनिच्छा और अश्रुपूरित नेत्रों से रुदन करने के बावजूद मैंने अपने केश अश्रु काट डाले और कषाय वस्त्र पहनकर गृह का त्याग करके अनिकेत जीवन अपना लिया। वे अपने प्रिय अश्व कंथक और सारथी छंदक को लेकर रात्रि में ही राज्य छोड़कर चल दिए। जब वे राजनगर से बहुत दूर आ गए तब उन्होंने अपने सारे वस्त्र और आभूषण उतार डाले तथा कसाय श्रमण वस्त्र धारण कर लिया। उन्होंने अपने खड़ग से अपने सिर से बाल काट डाले। अपने वस्त्रों और आभूषणों को उन्होंने अपने सारथी छंदक के हाथ अपने पिता के साथ पास भिजवा दिया। उनके अश्व ने जब यह जाना कि मेरा स्वामी मुझे अलग होकर जा रहा है तब उसने अपना प्राण त्याग दिया ताकि वह स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। ललित विस्तर से विदित होता है कि सिद्धार्थ ने यह कार्य मैनेयू के नगर अनुवैनेय में सूर्योदय के समय किया था जब उन्होंने शाक्य कोली और मल के जनपदों से आगे निकलकर अनुमाना द्वीप पार कर लिया था। सिद्धार्थ के गृह त्याग को लेकर डॉक्टर कौशाम्बी का यह अभिमत है कि सिद्धार्थ ने मात्र भावावेश में घर नहीं छोड़ा था बल्कि किन्हीं विशेष कारणों से उन्होंने गृह त्याग किया था जिनमें उनका चिंतनशील विचार तथा दुख से परिपूर्ण संसार महत्वपूर्ण कारक रहे होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी सोचा होगा कि निवृत्ति मार्ग ही श्रेयस्कर मार्ग है। जरा दुख मरण आदि के उपर्युक्त चित्रों ने भी उनके हृदय को अवश्य ही द्रवित किया होगा। उनके गृह त्याग का एक राजनीतिक कारण यह माना गया है कि शाक्य और उनके पड़ोसी कुलियों के बीच सिंचाई के निमित्त रोहिणी नदी के जल को लेकर बहुत विवाद और संघर्ष हो जाया करता था। इस पर शाक्यों ने सिद्धार्थ को कुलियों के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण करने के लिए निर्देशित किया। सिद्धार्थ व्यक्तिगत रूप में इस पारंपरिक वैमनस्यता शत्रुता और हिंसात्मक कार्यों से खिन्न थे तथा ऐसे संघर्ष को टालना चाहते थे। उन्होंने जब देखा कि उनके परिवार और पिता पर उनके विचारों के कारण आक्षेप हो रहा है तब इसका गंभीर परिणाम हो सकता है अथवा राज्य छोड़ना पड़ सकता है तब उन्होंने स्वयं गृह त्याग कर दिया और अपने परिवार और पिता की मर्यादा को बचा लिया। किंतु डॉक्टर कौशाम्बी द्वारा प्रस्तुत यह तर्क की राजनीतिक कारण सिद्धार्थ के गृहता के पीछे प्रमुख कारण थे युक्तियुक्त नहीं लगता है। निश्चय ही उनका मन सांसारिक दुख और कष्ट से द्रवीभूत था। वे समस्त मानव को इस दुख और कष्ट से छुटकारा दिलाना चाहते थे। अतः उन्होंने वास्तविक ज्ञान की खोज में गृहस्थिक और सांसारिक मोहमाया का त्याग कर निवृत्ति मार्ग का अनुसरण किया। वैराग्य का जीवन अपनाकर गौतम बुद्ध आर्य परिश्रमा के निमित्त कुशलता शांति सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सर्वप्रथम उन्होंने 7 दिन अनुपिया नामक आम्र उद्यान में बिताए। इसके बाद वे घूमते हुए राजगृह पहुंचे, जहां उनका राज्य की ओर से बड़ा आदर सत्कार किया गया, किंतु सिद्धार्थ ने यह सब अस्वीकार करके आगे का मार्ग अनुसरित किया। वस्तुतः वे एक ऐसे गुरु को चाहते थे जो उन्हें सत्य मार्ग का दिग्दर्शन करा सके। भ्रमण करते हुए वे अलार कलाम नामक सिद्ध तपस्वी के आश्रम में गए, जो अपनी साधना सांख्य दर्शन और वैराग्य के लिए प्रख्यात थे। उनके 300 शिष्य थे। सिद्धार्थ ने उनसे उत्तम, श्रेष्ठ और अशांतिमय जीवन की जिज्ञासाएं की। अलार अपनी समाधि क्रिया के लिए प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार एक बार समाधिस्थ रहने पर उन्होंने अपने निकट से जाते हुए 500 शकटों का सार्थ न देखा न सुना। सिद्धार्थ ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया तथा शून्य की अवस्था तक पहुंच गए, किंतु उससे उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। उन्हें जिस ज्ञान की अपेक्षा थी वह उन्हें नहीं मिला। तदनंतर वे सच्चे ज्ञान के अन्वेषण में आगे बढ़े और घूमते हुए उद्रण रामपुत नामक ज्ञानी के निकट पहुंचे, जिसके 700 शिष्य थे। उन्हें वहां ज्ञान और असंज्ञा से भिन्न योग का ज्ञान प्राप्त हुआ, किंतु गौतम को इससे भी आत्मसृष्टि तुष्टि नहीं मिली। वे जिस सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे वह उन्हें नहीं प्राप्त हुआ था। इसलिए वे भ्रमण करते हुए मगध जनपद के सैनिक सन्निवेश उर्वेला पहुंचे, जहां उन्होंने निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर 6 साल तक तपश्चर्या की। मझिम निकाय और ललित विस्तर में इस तपश्चर्या का इस प्रकार वर्णन किया गया है। तब राजकुमार, मेरे मन में यह हुआ कि क्यों न मैं दांतों के ऊपर दांत रखकर जीवा से तालु दबाकर मन से मन को निग्रह करूं, दबाऊं, संतापित करूं। तब मेरे दांत पर दांत रखने, जीवा से तालु दबने, मन से मन को पकड़ने, दबाने, तपाने में कांख से पसीना निकलता था। उस समय मैंने अदम्य वीर्य प्रारंभ किया था। स्मृति मेरी बनी थी, काया भी तत्पर थी। कोष्ठ में वरिया होती असलीन, उपटिता सती असमुठा, सार्थोच पन पकायो होती अब टिपस सद्धो। तब मुझे यूं हुआ, क्यों न मैं बिना श्वास के ध्यान करूं। इसलिए मैंने राजकुमार मुख और नसिका से श्वास का आना जाना रोक दिया। कुष्ठ में सो खोय अहम मुखतो च नासतो च अस्मा सपस्सा से उपरुंधित। तब राजकुमार मेरे मुख और नसिका से प्राश्वास पुश्वास के रूप जाने पर कान के छिद्रों से निकलती हवाओं का बहुत अधिक शब्द होने लगा। मूर्धा में बहुत अधिक हवा टकराने लगी, सिर में बहुत अधिक पीड़ा होने लगी, बहुत अधिक हवा पेट को छेदने लगी तथा शरीर में बहुत अधिक जलन होने लगी। प्राणायाम के इस अभ्यास से सिद्धार्थ को अपार कष्ट और वेदना हुई तथा इस तप से निश्चित पड़ गए थे। उन्होंने भोजन का भी नियमन किया और केवल मूंग, कुलथी, मटर, हरेणुका का अपने अंजलि पुट की मात्रा भर स्वल्प पूप लेकर जीवन यापन करते थे। मध्यम निकाय में स्वयं बुद्ध कहते हैं, मेरा कुल्हा ऐसा हो गया जैसे ऊंट का पैर, मेरी पसली ऐसी हो गई जैसे पुराने कोठे की टेढ़ी मेढ़ी कड़िया, मेरी आंखें ऐसी धस गई जैसे गहरे कुएं में तारा, मेरे सिर के खाल ऐसे चिचुक गए जैसे धूप से मुरझाया हुआ लौका। यदि मैं पेट को पकड़ता तो पसलियां हाथ में आ जाती, यदि मैं शरीर पर हाथ फेरता तो रोए खड़े हो झड़ जाते, यदि मैं मल मूत्र के लिए उठता तो चकराकर गिर जाता। लेकिन मैंने इस दूसरे कार्य से भी उत्तर मनुष्य धर्म न अपनाया। इस कठिन काया कलेश से भी उनको उद्दिष्ट ज्ञान की प्राप्ति न हो सकी। वस्तुतः उन्होंने निराहार और एकाकार जैसी अपनी असाधना और तपस्या से अपने शरीर को इतना अधिक क्लेश किया कि वह अस्थि पंजर अर्थात कंकाल मात्र रह गया। उनके साथ वहां कौंडिन्य जनित 5 और सुधी तप कर रहे थे। सिद्धार्थ के मन में तरह तरह की बातें आ रही थी तथा उनका मन गंभीर सोच में था कि इतना अधिक शरीर को तपाने से क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी जो उन्हें तब तक प्राप्त नहीं हो सका था। अतः उन्होंने निश्चय किया कि भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा काया को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं। इस तप साधना में उनके 5 और परिव्राजक थे जो पंचवर्गीय भिक्षु कहे गए थे, जिनके नाम है आज, कौंडिन्य, अजसी बप, महानाम और भद्दीय। इन तपस्वियों ने सिद्धार्थ के नैतिक और मानसिक जीवन में बहुत सहायता की थी। वे लोग प्रकृति और कर्म के सिद्धांतों की भी चर्चा करते थे तथा सांख्य और ब्राह्मणेतर चिंतन पद्धति का भी अन्वेषण करते थे। सिद्धार्थ ने अध्ययन की स्थिति का मनन किया। मध्यम निकाय में सिद्धांत के ध्यान की अवस्थाएं इस प्रकार दी गई हैं। पहला, विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख है और वह सवितर्क तथा सविचारित होता है। दूसरा, वितर्क और विचारों का उपशमन होने पर अवितर्क और विचार युक्त समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख का द्वितीय स्थान। प्रीति में विराग भाव होने से सुख युक्त तृतीय ध्यान। चौथा, चतुर्थ ध्यान जिसमें सुख दुख और सौमनस्य का अभाव हो गया। पांचवा, इस प्रकार समाहित परिशुद्ध पर्यवदात निर्मल विगत का उपक्लेश चित्त से पूर्व भय भाव की अनुस्मृति का ज्ञान प्राप्त किया। अपने अपने कर्म के अनुसार सत्वों का उच्च नीच गति में जन्म और मृत्यु का ज्ञान। सातवा, मुझ में अस्त्रों का क्षय हुआ। इस प्रकार का ज्ञान होने पर मेरा चित्त कामास्त्रों से भवास्त्रों से और अविद्यास्त्रों से विमुक्त हुआ। यह दुख है, यह दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है और यह दुख से निरोध का मार्ग है। ऐसा मैंने यथाभूत ज्ञान पाया है। चित्त विमुक्त होने पर मैंने जाना कि मेरा पुनर्जन्म क्षीण हुआ। महावाग में उल्लिखित है कि उस समय ब्रह्मा सहपति ने सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए कहा था, अब तक मगध देश में कलुषित मानव द्वारा परिकल्पित धर्म ही प्रतिपादित हुआ है, परंतु अब भगवान धर्मोपदेश कर मानव मात्र के लिए निर्वाण मार्ग को प्रशस्त करने की कृपा करें। सभी मनुष्य अमृत द्वार को खोलने वाले विमल द्वारा प्रतिपादित मन को श्रवण करें। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध ब्रह्मा सहपति की प्रार्थना पर मनुष्य मात्र को धर्म का उपदेश देने के लिए तत्पर हुए। जातक कथा से व्यतीत होता है कि उन्होंने भोजन ग्रहण करने का निश्चय कर उर्वेला के सेनानी की पुत्री सुजाता से भोजन प्राप्त कर अपना व्रत तोड़ा था। उनकी ऐसा करने पर कौंडिन्य जनिन सहित पांचों साधकों ने उन्हें पथभ्रष्ट माना और वे उन्हें छोड़कर ऋषिपत्तन चले गए। तत्पश्चात सिद्धार्थ गया पहुंचकर वट वृक्ष के नीचे पुनः साधना लीन हो गए। इस बार उन्होंने दृढ़ कर लिया था कि जब तक वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक समाधि अवस्था में ही रहेंगे। 7 दिन और 7 रात समाधि अस्त होकर उन्होंने निरंतर निर्विघ्न तप किया। 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें सत्य और ज्ञान का आलोक मिला। इससे उनका संपूर्ण शरीर और मन प्रकाशित हो उठा और उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई। अतः वे तथागत और बुद्ध कोष्ठ में जिसे बुद्ध या ज्ञान की प्राप्ति हो कहे गए। बुद्ध प्राप्ति का स्थान होने के कारण गया बुद्ध गया के नाम से जाना गया तथा जिस बट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोधि वृक्ष कहा गया। अब उन्होंने विभिन्न कष्टों और दुखों से पीड़ित जनता को ज्ञान और सत्य की शिक्षा देने का निश्चय किया। गया में उन्होंने तपस्सु और मल्ली नामक निम्न जाति दो बंजारों को उपदेश देकर अपना अनुयायी बना लिया। समाज के शूद्र और दलित वर्ग के प्रति उनके स्नेह और प्रेम का यह प्रबल प्रमाण है। गया से वे काशी के ऋषिपत्तनम नामक स्थान में पहुंचे जहाँ उन्होंने सर्वप्रथम उन 5 तपस्वियों को दीक्षा दी जो उनके साथ उरुबेला में तपस्या कर रहे थे। इससे उन्हें अरहत्व प्राप्त हुआ। बौद्ध साहित्य में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बाद में इस महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में उस स्थान पर सम्राट अशोक ने एक प्रस्तर स्तंभ और स्तूप का निर्माण करवाया। संयुक्त निकाय में धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त विवृत है जिसके अनुसार बुद्ध के प्रथम उपदेश निम्नलिखित थे। परिव्राजों को अति किल्मत अनुयोग और काम सुल्लख अनुयोग से बचना चाहिए। दोनों अतिशय मार्गों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उसे मध्यम पदिव्या का अनुगमन करना चाहिए तथा सत्य चतुष्टय का पालन करना चाहिए। पहला, दुख का सत्य जो जन्म जरा रोग मृत्यु शोक विलाप चिंता निराशा आदि के रूप में अभिव्यक्त होता है। दूसरा, दुख समुदाय का सत्य अर्थात जन्म राग सुख भोग की स्प्रिया जिससे इस संसार में पुनर्जन्म होता है। तीसरा, दुख से निवृत्ति का सत्य जिससे त्याग का भाव उत्पन्न होता है और तृष्णा का अंत हो जाता है। मध्यम परिपदा अर्थात मध्यम मार्ग जिससे दुख से निवृत्ति होती है इसके आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाक सम्यक कर्म सम्यक जीविका सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान और सम्यक समाधि। इस उपदेश को सुनने के बाद वे पांचों ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बन गए। वाराणसी में यश नामक श्रेष्ठी पुत्र अपने पिता, माता, पत्नी, चार भाई मित्र और 50 साथियों के साथ बुद्ध के उपासक बन गए। उसकी माता और पत्नी पहली बार बुद्ध की उपासिकाएं बनी। इस प्रकार 60 भिक्षुओं से सर्वप्रथम बौद्ध संघ का कार्य प्रारंभ हुआ। बुद्ध ने उन सबको आहूत कर यह निर्देश दिया, भिक्षुओं, बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखार्थ, लोक पर अनुकंपा करने के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो, एक साथ दो मत जाओ। हे भिक्षुओं, आदि में कल्याण कर, मध्य में कल्याण कर, अंत में कल्याण का इस धर्म का अनुपालन करो। ऋषिपत्तन कोष्ठ में सारनाथ में वर्षा ऋतु बिताने के बाद महात्मा बुद्ध उरुबेला की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें 30 धनी युवा मिले जो किसी वेश्या की खोज में थे। वह वेश्या उन नौजवानों का धन लेकर पलायित हो गई थी। उन युवाओं के प्रधान का नाम भद्र था, इसलिए वे भद्रवर्गीय कहे गए। बुद्ध ने उन्हें दीक्षा देकर अपना अनुयायी बना लिया। तदनंतर वे उरुबेला पहुंचे। वह स्थान ब्राह्मण धर्म और कर्म कांड का प्रधान केंद्र था। वहां अग्निहोत्री जटिल ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 3 जटिल प्रधानों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया जो सगे भाई थे, मुख्य कश्यप, नंदी कश्यप और गया कश्यप। इन तीनों कश्यपों के क्रमशः 500, 300 और 200 जटामंडित शिष्य थे। वे सभी जटिल बंधु बुद्ध के अनुयायी हो गए। अपने इन शिष्यों के साथ बुद्ध राजगिरि गए जहाँ सम्राट बिम्बिसार ने उनका बहुत स्वागत किया। वहाँ की जनता यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि कश्यप जैसे विशुद्ध जटिल ब्राह्मण धर्मावलंबी बुद्ध के शिष्य बन गए हैं। दूसरे दिन बिम्बिसार ने बुद्ध को भोजन प्रारंभित किया तथा श्रद्धा स्वरूप वेणुवन दान में प्रदान किया। राजगृह की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है संजय नामक तापस का अपने 250 शिष्यों के साथ बुद्ध के संग में सम्मिलित होना। वस्तुतः राजगृह मगध की राजधानी और ब्राह्मण धर्म तथा दर्शन का केंद्र था। संजय परिव्राजक ब्राह्मण धर्म के प्रधान थे जिनके संघ का प्रभाव राजगृह में था, किंतु उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। संजय के शिष्यों में 2 अत्यंत विद्वान शिष्य थे जिनके नाम सारिपुत्र मोगल तथा मोगलान था। ये दोनों विद्वान व्यक्ति ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि ये दोनों लोग वाराणसी की गली में बैठे किसी विषय पर संभाषण कर रहे थे कि उसी समय असजी नामक एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगते हुए उधर से निकला। उसकी उज्जवल और गंभीर मुख मुद्रा देखकर वे दोनों बहुत प्रभावित हुए। तत्पश्चात उन दोनों ने उस भिक्षु से बातचीत की और बुद्ध के पास राजगृह गए। ये दोनों अपने गुरु संजय को बिना सूचित किए बुद्ध के शरण में चले गए और अपने आचार्य संजय से भी बुद्ध के निकट जाने के लिए अनुरोध किया, किंतु उस समय उन्होंने यह नहीं माना। कुछ समय बाद उन्होंने भी बुद्ध का धर्म अपना लिया। टीकाकारों के अनुसार सारिपुत्र सारी अथवा सारद्वती के पुत्र थे जिनका जन्म उपतिष्य नामक ग्राम में हुआ था। मोगलान का जन्म मोगली नामक ब्राह्मणी से राजगृह के निकट कोलित नामक ग्राम में हुआ था। यह संयोग की बात है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। राजगृह में ढेर सारे लोग, चाहे विद्वान रहे हों अथवा साधारण जन, सभी महात्मा बुद्ध के अनुयायी होकर भिक्षु बनते जा रहे थे। राजगृह में बुद्ध की यह बहुत बड़ी सफलता थी, किंतु कुछ राजगृह निवासी धनी लोगों ने युवा वर्गों के भिक्षु बनने का बुद्ध का प्रतिरोध किया, क्योंकि नवयुवकों के परिव्राजक बन जाने से माता पिता निसंतान होने लगे, परिवार टूटने लगा, पत्नियां बिना पति की होने लगी तथा परिवार बिना उत्तराधिकारी के होने लगा। किंतु बुद्ध ने अपने शिष्यों को शांति और निश्चितता से विरोधी लोगों को समझाने के लिए कहा, हे भिक्षुओं, आप लोग विरोध करने वालों से कहें कि महावीर अस्थागत तथागत लोगों को सद्धर्म के मार्ग से ले चलते हैं। शाक्य बुद्ध बौद्ध के अनुयायी श्रवण धर्म के मार्ग से लोगों को ले चलते हैं और धर्म से नहीं। बुद्ध के इस वचन और निर्देश का निर्देश के बाद एक ही हफ्ते में राजगिरी के नागरिकों का विरोध समाप्त हो गया। भ्रमण करते हुए बुद्ध अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु पहुंचे। उनके आगमन पर वहां अपार भीड़ समवेत हो गई। यह एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटना थी। वहां उन्होंने अपने पिता, राज परिवार की नारियों, अपनी पत्नी आदि को धर्मोपदेश दिया। अपने पुत्र राहुल और अपनी मौसी गौतमी के पुत्र अपने मौसेरे भाई नंद को भिक्षु बनाया। सबसे बड़ी विडम्बना यह थी कि जिस दिन नंद का राज्याभिषेक होने वाला था और जनपद कल्याणी नामक रूपवती कन्या से विवाह होने वाला था, उसी दिन उसकी बौद्ध धर्म में दीक्षा दी गई। इन दोनों के भिक्षु बन जाने से राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं रह गया। राजा सुदोधन इस घटना से अत्यंत दुखी और शोकाकुल हो गए थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान पुत्र का प्रेम त्वचा मांस अस्थि को बहता हुआ मज्जा तक पहुंचता है। इसके बाद बुद्ध ने यह नियम बना दिया कि बिना माता पिता की अनुमति के कोई भिक्षु नहीं बन सकता। वहां पर बुद्ध की क्षीरदायिकता महाप्रजापति गौतमी ने भी प्रव्रज्ञा ग्रहण करने की उत्कट अभिलाषा प्रकट की। उसी समय सर्वप्रथम बौद्ध संघ में नारी प्रवेश की बात उठी। बुद्ध नहीं चाहते थे कि नारियां बौद्ध संघ में प्रवेश करें। वे नारी सुलभ दुर्बलताओं और मानवीय अभिव्यक्तियों से पूर्णतः अभिज्ञ थे। उन्होंने गौतमी से कहा, नहीं गौतमी, मत तुझे रुचे कि स्त्रियां भी तथागत के दिखावे धर्म विनय में घर से बेघर प्रव्रज्ञा ग्रहण करें। यह कहकर बुद्ध ने गौतमी को 3 बार इनकार किया और तदनंतर वैशाली चले गए। किंतु वह उसके पीछे पीछे सूजे पैरों से धूल में सनी हुई और रोती हुई द्वार के बाहर आ खड़ी हुई। इस पर उनके परम शिष्य आनंद ने बुद्ध द्वारा अनुमति न दिए जाने पर तथागत से गौतमी को प्रव्रजित करने के लिए विनय पुरस्सर आग्रह किया तथा नारी के समान अधिकार का तर्क प्रस्तुत किया। फलतः बुद्ध ने गौतमी को प्रव्रज्ञा ग्रहण करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी, किंतु इसके साथ नारियों पर कड़ा अनुशासन भी रखा तथा उन कठोर नियमों का अनुपालन करना आवश्यक बताया। इस प्रकार सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ स्थापित किया गया। इसी बीच शाक्यों और कोलियों के बीच जल विवाद पुनः छिड़ गया और बुद्ध उस विवाद को सुलझाना चाहते थे। सुदोधन का पूरा राज्य परिवार ही छिन्न भिन्न हो गया। गौतमी का पुत्र नंद और तथा बुद्ध की भार्या यशोधरा भी प्रव्रज्ञा ग्रहण करके भिक्षुणी बन गई। इस प्रकार कपिलवस्तु राज परिवार के स्त्री पुरुष सभी सदस्य बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। कपिलवस्तु से लौटते समय मार्ग में अनुप्रिया नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध ने शाक्य शासकों को उपदेश दिया जो महात्मा बुद्ध से मिलने आए थे। उनके नाम है शाक्य नरेश, भद्रिक, आनंद, अनुरुद्ध, उपाली और देवदत्त। ये लोग बौद्ध भिक्षु बन गए और बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें आनंद बुद्ध के अत्यंत निकट और उसके प्रबल समर्थक थे। देवदत्त जो बुद्ध का चचेरा भाई था पहले उनका अनुगत बना, फिर उसका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें कोई सफलता नहीं मिली। उसने 500 भिक्षुओं को लेकर स्वतंत्र संघ बनाने की चेष्टा की और इसके निमित्त वह गयासीस नामक स्थान पर चला गया। बाद में सारिपुत्र और मुगलान ने वहां जाकर अन्य भिक्षुओं को समझाया तथा उन विपथगामी भिक्षुओं को लौटाकर वापस ले आए। देवदत्त इस पर क्रुद्ध हुआ और वहां बुद्ध के विरुद्ध मिथ्या प्रचार करने लगा। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहल भिक्षु बना था। वह मूलतः ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का था तथा बुद्ध की जनप्रियता से द्वेष करने लगा था। बुद्ध के मृत्यु होने पर वह पुनः संघ का नेता बनना चाहता था और उसने स्वतः उनसे बौद्ध संघ का नेतृत्व त्यागने के लिए कहा। यही नहीं, बौद्ध संघ की हस्तगत करने के लिए उसने 3 बार राजगृह में बुद्ध की हत्या करने का प्रयास किया था तथा इस निमित्त उसने शासन के धनुर्धारियों को लगा रखा था जिन्होंने भगवान बुद्ध के निकट पहुंचकर अपने हृदय परिवर्तित कर लिए तथा इस निमित्त उसने शासन के धनुर्धारियों को लगा रखा था जिन्होंने भगवान बुद्ध के निकट पहुंचकर अपने हृदय परिवर्तन कर लिए। अतः उसका यह प्रथम प्रयास विफल हो गया। दूसरी बार उसने गृद्धकूट पर्वत के शिखर पर एक शिलाखंड तब गिराया था जब भगवान बुद्ध नगर की ओर जा रहे थे। इससे बुद्ध के पैर के ऊंटे में चोट आई और उसकी चिकित्सा जीवक ने बड़े मनोनिवेश पूर्वक की। तीसरी बार उसने हाथी से उन्हें कुचलवाने का प्रयास किया था। इसके लिए उसने शासकीय हस्तचालक को भरमाया था जिसने नालागिरी नामक हाथी को मद से मस्त कर उसी मार्ग पर छोड़ देने का षड्यंत्र किया जिधर से बुद्ध आया जाया करते थे। किंतु सर्वाधिक आश्चर्य तो तब रहा जब सूरज से उन्मुक्त वह हाथी भगवान बुद्ध के सम्मुख आया और उनके पैर स्पर्श करने लगा। चुल्लवाग एवं अन्य कई जातकों में इस घटना का विवरण इस प्रकार दिया गया है। भगवान पूर्वाह में बहुत से भिक्षुओं के साथ राजगिरी में पिंडवार के लिए गए। तब भगवान उस मार्ग पर आए। हाथी चालकों ने जब भगवान की ओर उस मार्ग पर आते देखा तो नालागिरी हाथी को उस मार्ग पर छोड़ दिया। वह हाथी भगवान को आते देखकर अपनी सूंड खड़ी करके प्रहस्ट हो कान फटकारते हुए भगवान बुद्ध की तीव्रता तीव्र गति से आगे बढ़ा। भगवान ने उस हाथी को मैत्री भाव से देखा। भगवान की मैत्री दृष्टि से वह सपृष्ट हो गया, अपनी सूंड नीचे झुका ली तथा भगवान तथा जहाँ भगवान खड़े थे वहाँ पहुँचकर खड़ा हो गया। भगवान ने नालागिरी के कुंभ को अपने दाहिने हाथ से थपथपाया, तब उस मद्मथ हस्ती ने सूंड से भगवान के चरण बज को लेकर अपने मस्तक पर डाला। बुद्ध ने राजगृह को अपने कार्य क्षेत्र का केंद्र बनाया था। वहाँ उन्हें अनेक सुविधाएं प्राप्त थी। मगध नरेश बिम्बिसार की रानी क्षेमा बुद्ध के संग में दीक्षित हो चुकी थी। वहाँ से चितवन में ठहरे हुए थे तथा लोगों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन त्रावस्ती का श्रेष्ठी सुदत्त राजगृह आया था तथा उसने भगवान बुद्ध का दर्शन किया। उसने उनसे दीक्षा प्राप्त की। उसी समय सुदत्त की बहन ने, जो राजगृह की श्रेष्ठी की पत्नी थी, भगवान बुद्ध और उनके संघ की अभ्यर्थना की और अत्यधिक आदर सत्कार किया। इससे सुदत्त बहुत अधिक प्रभावित हुआ। वह जब श्रावस्ती लौटा तब उसकी इच्छा होने लगी कि वह राजकुमार जेत का उद्यान क्रय करके बुद्ध के निवास के लिए अर्पित करे। जब सुदत्त ने अपनी इच्छा राजकुमार जेत के प्रमुख सम्मुख प्रकट की तब उसने कहा कि वह अपना खेत उद्यान तभी किसी को देगा जब क्रय करने वाला उतनी स्वर्ण मुद्राएं देगा जितनी उद्यान की समस्त भूमि पर बीस सकेगी। सुदत्त ने राजकुमार जेत की बात स्वीकार कर ली। एक बार राजकुमार जेत अपने वचन से हटना भी चाहता था किंतु न्यायालय ने उसके विरुद्ध निर्णय दिया। तत्पश्चात सुदत्त ने संकट समूह पर 18 कोटि स्वर्ण मुद्राएं लदवा कर जेत उद्यान की भूमि पर बिछवा दी। बुद्ध के धर्म और संघ के प्रति सुदत्त श्रेष्ठी की श्रद्धा जनित कार्य से राजकुमार जेत इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहां स्वयं एक तोरण द्वार और भंडार का निर्माण करवाया। इस जेत वन बिहार में भरहुत स्तूप की एक मूर्ति पर स्थान का दृश्य अंकित है। उस मूर्ति पर अंकित है जेत वन अनथ पेडी को देती कोटी समुबेन को केता। भरहुत स्तूप के उस शिल्प में यह दर्शित किया गया है। पहला, एक गाड़ी है जिसके बैल खोल दिए गए हैं और उस पर से उतरी गई चकोर स्वर्ण मुद्रा पृथ्वी भूमि पर बिछाई जा रही है। दूसरा, वेदिका के अंदर एक बोधि वृक्ष है जो भगवान बुद्ध की विद्यमानता व्यक्त करता है। और दूसरी तीन अन्य वृक्ष हैं जो उद्यान की परिकल्पना को मुखर करते हैं। तीसरा, दो कुटागार हैं जिनमें ऊपर वाले के निकट गंधकुटी लेख उत्कीर्ण है। श्रावस्ती में एक विशाल बिहार का निर्माण कराया गया था जिसकी आर्थिक सहायिका और संरक्षिका विशाखा थी। वह अंग जनपद के भद्दी ग्राम के सेठ की दुहिता थी। सम्राट बिम्बिसार ने भद्दीय सृष्टि को कौशल में सृष्टि का कार्य करने के लिए प्रसेनजीत के यहाँ भेजा था। श्रावस्ती जाते समय मार्ग में वह एक रमणीक स्थान पर रुका जिसके कारण वह स्थान साकेत कहा गया। प्रसेनजीत ने उसे उसी स्थान पर ठहरने के लिए कह दिया। साकेत के महासृष्टि मिगार के पुत्र पुण्यवर्धन से विशाख का विवाह हुआ। मिगार अचेलक साधुओं से प्रभावित था जिन्होंने उसे विशाख के विरुद्ध भड़काया और उसे दोषी बताया, जिसे विशाखा ने निराधार और असत्य सिद्ध कर दिया। विशाखा इसे दुख देकर गृह त्याग करके जाना चाहती थी किंतु उसी बीच महात्मा बुद्ध का आगमन हो गया। वहां पहुंचकर उन्होंने विशाखा को अपने धर्म में दीक्षित कर लिया। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद विशाखा नित्य बिहार में जाती थी। एक दिन वह बिहार में अपनी मूल्यवान शिरोभूषण भूल गई जिसे आनंद ने सुरक्षित रख लिया। जब आनंद उसका शिरोभूषण लौटाने लगे तो उसने लेना स्वीकार कर दिया तथा यह कहा कि इसे विक्रय कर दे, किंतु वह इतना बहुमूल्य था कि उसे खरीदने के लिए कोई तत्पर नहीं हुआ। अंततोगत श्रावस्ती में एक बिहार बनवाने में उस धन का उपयोग किया गया। उस बिहार का नाम पूर्वा राम बिहार रखा गया। भगवान बुद्ध जब कभी श्रावस्ती आते तो कभी चेतवन बिहार में ठहरते, कभी पूर्वाराम बिहार में। विशाखा ने वहां के परिव्राजकों के लिए 8 प्रकार के अन्न से युक्त सदाव्रत की व्यवस्था की। वर्षावास के लिए चीवर, आने और जाने वाले श्रमण के लिए भोजन, उसके सेवक के लिए भोजन, रोगी भिक्षु और उसके सेवकों के लिए आहार, अस्वस्थ भिक्षु के लिए औषधि और पथ तथा भिक्षुणियों के लिए स्नान घाटी का भी प्रबंध किया। बुद्ध को वैशाली यात्रा के लिए समस्त लिच्छवी संघ ने आमंत्रित किया था। उस समय वैशाली में तीव्र महामारी फैली हुई थी, जिससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए वहां के लोग आतुर थे। वहां के लोगों का यह विश्वास था कि भगवान बुद्ध के पुण्य दर्शन से वहां की महामारी समाप्त हो जाएगी। लिच्छवी संघ समूह ने महात्मा बुद्ध का स्वागत सम्राट की भांति किया, जिसमें असंख्य हाथी और रथ सम्मिलित थे। वैशाली संघ ने बुद्ध के आवास के लिए कुटागार, शाला और 8 अन्य उद्यान अर्पित किए। वहां की गणिका आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर उसका आदर सत्कार किया तथा साथ ही आम्रपाली वन भी बौद्ध संघ को दान में प्रदान किया। जब जब बुद्ध वैशाली जाते थे, उसी महावन में निवास करते थे। आम्रपाली ने भी बुद्ध की शरण ली। भर्ग जनपद के राजकुमार बोधि ने भगवान बुद्ध और उसके संघ को आमंत्रित किया, किंतु बुद्ध ने वहां तब जाने से अस्वीकार कर दिया जब तक राजा प्रसाद की सीढ़ियों पर बिछाया गया श्वेत वस्त्र हटा न दिए जाए। बुद्ध ने वहां भेष कला वन के मृगदाव के पास सुमुमारगिरी पर अपना वह वर्ष व्यतीत किया। वहीं उन्होंने धर्मात्मा गृहपति नकुल पिता और उनकी पत्नी को उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना नवा वर्ष कौशाम्बी के घोत सीताराम बिहार में व्यतीत किया। वह बिहार कौशाम्बी के शासक वत्सराज उदयन के 3 मंत्रियों में से एक ने प्रदान किया था। उस समय की वहां की 2 घटनाएं महत्वपूर्ण है। वहां की एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या मांगंदिया का विवाह बुद्ध से करने की इच्छा प्रकट की, जिसे बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह सम्राट उदयन से किया। उदयन की एक दूसरी पत्नी समावती थी, जो बौद्ध उपासिका थी। मांगंदिया ने अपने अपमान का बदला बौद्ध समावतिया से लिया और षड्यंत्र करके उसे राजमहल के एक अग्निकांड में जला दिया। उसी वर्ष एक और घटना घटी, जब बौद्ध संघ के एक भिक्षु ने संघ के नियमों को मानने से इनकार कर दिया तथा उसने अपने अपराध को भी नहीं स्वीकार किया। संघ के नियमों के अनुशासन से वह संघ से निष्कासित कर दिया गया। इस पर उसने इसे नियम को भी आलोचना की तथा उसे चुनौती दी। महात्मा बुद्ध इस विवाद को सुलझा न सके तथा इससे व्यथित होकर भिक्षुओं को छोड़कर परिलेयक वन में एकांतवास के लिए प्रस्थान कर गए। फलतः नगरवासियों ने भिक्षुओं की निंदा की और अपनी सहानुभूति समाप्त कर दी। इस पर भिक्षुगण बुद्ध से क्षमा याचना के लिए चल दिए। उस समय बुद्ध सर्वस्थी में अपना 10वां वर्ष व्यतीत कर रहे थे। वहां जाकर भिक्षु ने महात्मा बुद्ध से क्षमा याचना की। बुद्ध ने अपना 11वां वर्ष बिरंजा नामक स्थान पर बिताया। वहां के ब्राह्मण बिरंज ने उनका उपदेश सुना तथा अपने को उनका शिष्य बना लिया। उसने बुद्ध और उनके भिक्षुओं को चतुर्मास मनाने के लिए आमंत्रित किया, किंतु वहां अकाल पड़ने के कारण वह ब्राह्मण उन लोगों का समुचित आतिथ्य न कर सका। तत्पश्चात 500 अश्ववणिजों पर भोजन का भार सौंपा गया। इस पर मुगलान ने अपनी सिद्धियों के बल पर सबके लिए आहार उपलब्ध करने की सोची। बुद्ध को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इसके लिए अनुमति नहीं दी। उन्होंने अपना 15वां वर्ष श्रावस्ती के न्यग्रोधाराम में व्यतीत किया। भद्री के भिक्षु बन जाने पर महानामान शाक्य संघ का प्रधान उत्तराधिकारी बनाया गया। उसे बुद्ध ने उपदेश दिया। उस समय भद्दिया ने बुद्ध के इस उपदेश को सुनकर अपनी पुत्री को छोड़ दिया, जिस पर उसके ससुर सुप्रबुद्ध शाक्य ने क्रुद्ध होकर महात्मा बुद्ध का अपमान किया तथा सूरापान करके उन पर आघात करने का प्रयास किया, किंतु यह करने से के पूर्व ही उसका अविलंब प्राणांत हो गया। श्रावस्ती की ही एक और मर्मस्तिक कथा है, जब बुद्ध ने श्रावस्ती के 30 नामक भिक्षु की स्वयं से परिचर्चा की थी। वह भिक्षु त्वचा रोग से ग्रस्त और पीड़ित था। बुद्ध ने स्वयं अपने हाथ से गर्म जल का उपयोग कर उसे स्नान कराया तथा उसे नवीन वस्त्र धारण करा के भिक्षुओं को सम्मानित किया। तुम लोगों के माता पिता नहीं है, इसलिए तुम लोग एक दूसरे के माता पिता बनो। यह विवरण बुद्ध के मानव प्रेम और जनसेवा को अभिव्यक्त करता है। बुद्ध ने 20वां वर्ष श्रावस्ती में बिताया। इस अवधि में जो अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी वह थी गुरु डाकू अंगुली माल के हृदय का परिवर्तन। वह अपनी निर्ममता और जघन्यता के लिए कुख्यात था। और जिस किसी को भी पकड़ता उसकी उंगली को काट कर माला बनाकर पहन लेता था। उसकी इस क्रूरता और निर्दयता से वहाँ के आसपास की जनता अस्त्र और भयातुर थी, त्रस्त और भयातुर थी। महात्मा बुद्ध उसे उसके अपराधों और अत्याचारों से विरत कराना चाहते थे। इसके लिए उसने उसे मिलने के लिए चालिका के समीप वन में गए। उन्होंने उसे अपनी वाणी और दृष्टि और प्रकाशिका प्रज्ञा से आकृष्ट और प्रभावित कर लिया तथा उसके हिंसक स्वभाव और राक्षसी व्यवहार को तुरंत परिवर्तित कर दिया। वह बौद्ध भिक्षु बन गया। जब सम्राट प्रसन्नजीत उसके लिए यहाँ आए तब उंगलीमाल भी वहाँ बैठा हुआ था। जब सम्राट का विद्युत हुआ कि वो यही हुआ कुख्यात डाकू उंगलीमाल है तो वे अत्यधिक भयभीत हुए। इस पर बुद्ध ने उन्हें यह कहकर आश्वस्त किया कि उंगलीमाल जब अब धर्मान्यायी और सज्जन हो गया है। इस कथन से प्रसन्नजीत प्रभावित होकर प्रसन्नजीत ने उस डाकू को वस्त्र तथा अन्य वस्तु प्रदान करनी चाहिए, किंतु उंगलीमाल ने विनम्रतापूर्वक यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि बस राजन मेरे पास अपने 3 चीवर हैं।